एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं पूर्वी अफ्रीका की ओर, खास तौर पर केन्या। वहां हम मिलेंगे एक ऐसे लेखक, नाटककार और विचारक से जिनकी आवाज दुनिया भर में गूंजती है, नंगूगी वा थियोंगो।
नंगूगी वा थियोंगो,
हाँ।
इनकी कहानी सिर्फ मतलब शब्दों की कहानी नहीं है, ये गहरे संघर्ष की, अपनी पहचान की तलाश की कहानी है। पता है उनका जन्म का नाम जेम्स नंगूगी था?
हाँ, जेम्स नंगूगी, बाद में बदला उन्होंने।
बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो जैसे अपनी जड़ों की ओर लौटना था। सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था।
सही कहा, नंगूगी सिर्फ एक लिटरेरी फिगर नहीं है, वो तो मतलब उपनिवेशवाद और फिर जो उसके बाद आया नव उपनिवेशवाद, उसके खिलाफ एक ग्लोबल आवाज है, एक प्रतिरोध का सिंबल।
और भाषा को वो जिस तरह देखते हैं, एक राजनीतिक हथियार की तरह, उसकी ताकत को पहचानने की जो बात करते हैं, वो आज भी मतलब कितनी रिलेवेंट है।
बहुत ज्यादा। उनका पूरा जीवन और उनका लेखन दोनों ही जैसे इस बात का सबूत है कि कैसे शब्द क्रांति ला सकते हैं और कैसे अपनी भाषा में सोचना, अपनी भाषा में लिखना, वो आजादी की पहली शर्त है।
बिल्कुल।
तो आज के इस बातचीत में हम गूंगी के जीवन के जो अहम पड़ाव रहे, उनके वो विचार जिन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया, और उनकी वो रचनाएं जिन्होंने न सिर्फ अफ्रीकी साहित्य पर बल्कि पूरी दुनिया की सोच पर गहरा असर डाला है, उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे।
हाँ जरूर, तो शुरुआत करते हैं उस टाइम से, उस माहौल से जिसमें गूंगी ने आंखें खुली। साल था 1938 और जगह थी ब्रिटिश केन्या।
जी,
ये एक आप कह सकते हैं बड़े टेंशन वाला दौर था।
जी,
जमीनें छीनी जा रही थी, खासकर गूंगी के अपने समुदाय गिक्यू समुदाय से।
गिक्यू, हाँ।
नस्ल भेद तो था ही, चरम पर था, और जो वेस्टर्न एजुकेशन थी ईसाई मिशनरियों के जरिए, वो लोकल कल्चर पर हावी हो रही थी। मतलब एक तरह का सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों तरह का दमन चल रहा था।
और इसी दमन के बीच से प्रतिरोध की आवाजें भी उठ रही थी, जो बाद में माओ माओ विद्रोह के रूप में सामने आए, है ना, 1952 से 60 के बीच।
हाँ, माओ माओ बहुत बड़ा विद्रोह था वो।
इस विद्रोह ने केन्या की आजादी की लड़ाई को तो एक दिशा दी ही, लेकिन नंगूगी के अपने जीवन पर, उनके किशोर मन पर भी इसकी बहुत गहरी छाप पड़ी।
बिल्कुल, उनके परिवार ने तो उसे सीधे झेला। उनका सौतेला भाई इसी विद्रोह में मारा गया था, माँ को टॉर्चर किया गया। ये जो अनुभव थे ना, ये बाद में उनके लेखन का कह सकते हैं कच्चा माल बने।
हाँ, और यहीं एक अजीब सी बात भी दिखती है, एक विडंबना।
क्या?
कि जिस औपनिवेशिक व्यवस्था ने उनके लोगों का इतना दमन किया, उसी के बनाए स्कूलों में, पहले मिशनरी स्कूल, फिर वो प्रतिष्ठित अलायंस हाई स्कूल, नंगूगी ने पढ़ाई की।
हाँ ये तो है, मतलब जैसे दो दुनियाओं के बीच खड़े थे वो।
बिल्कुल, बाद में फिर युगांडा गए, मैक्रेरे यूनिवर्सिटी, जिसे अफ्रीका का हार्वर्ड भी कहते थे उस टाइम।
हाँ, मैक्रेरे बहुत अहम सेंटर था वो।
और फिर इंग्लैंड गए, लीड्स यूनिवर्सिटी। इन सब जगहों ने उनकी सोच को और तराशा, खासकर लीड्स में। सुना है कैरिबियाई साहित्य और फ्रांस फैनन के विचारों का उन पर बहुत असर हुआ।
हाँ, फैनन था, उसने उन्हें उपनिवेशवाद का जो साइकोलॉजिकल असर होता है ना, उसको समझने में बहुत मदद की, कि कैसे वो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी गुलाम बनाता है।
अच्छा, उसी दौर में, मतलब 60 के दशक में, जब अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन चल रहा था, देश आजाद हो रहे थे, तब एक नई लिटरेरी वेव भी उठ रही थी।
हाँ, अफ्रीकन लिटरेचर का पुनर्जागरण कह सकते हैं। चिनू अचेबे, वोले सोयंका, ये सब उसी पीढ़ी के थे। नंगूगी भी
ये सब अफ्रीकी अनुभवों को अपनी जुबान देना चाहते थे, लेकिन यही वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ, कौन सी जुबान, अपनी या अंग्रेजी?
और यही नंगूगी के चिंतन का, उनके विचारों का सेंट्रल पॉइंट बना, भाषा का सवाल। क्या अफ्रीकी लेखक अपनी सच्चाई, अपने लोगों का दर्द, अपनी संस्कृति की आत्मा को उपनिवेशक की भाषा में, अंग्रेजी या फ्रेंच में, सही मायने में व्यक्त कर सकते हैं?
ये तो बहुत बड़ा सवाल था।
हाँ, शुरुआत में तो उन्होंने भी अंग्रेजी में लिखा, उनके पहले के उपन्यास अंग्रेजी में ही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका नजरिया बदला, बहुत रेडिकली बदला।
चलिए इसी विचार पर थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि नंगूगी का जो सबसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है, उनका सबसे अहम विचार, वो शायद यही है, अपनी मातृभाषा गिक्यू और दूसरी अफ्रीकी भाषाओं में लिखने का फैसला।
बिल्कुल, उनकी वो किताब डीकोलोनाइजिंग द माइंड जो 1986 में आई।
हाँ, बहुत चर्चित किताब है वो।
वो इसी सोच का एक तरह से मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है। उसमें वो यही तर्क देते हैं कि भाषा सिर्फ मतलब कम्युनिकेशन का टूल नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो तो संस्कृति की वाहक है, इतिहास की, हमारी जो कलेक्टिव मेमोरी है, सामूहिक स्मृति, उसको ढोती है भाषा। जब आप कॉलोनाइजर की भाषा अपनाते हैं तो आप अनजाने में उसी की दुनिया, उसी के वैल्यूज को अपना लेते हैं। ये एक तरह की मेंटल स्लेवरी है, मानसिक गुलामी।
मानसिक गुलामी, वाह।
तो गोगी के लिए अपनी भाषा में लौटना इस गुलामी से आजादी का रास्ता था, एक तरह का लिबरेशन था।
यानी वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल आजादी तब तक अधूरी है जब तक आप कल्चरली और मेंटली आजाद ना हो।
एग्जैक्टली।
तो उनका अंग्रेजी में लिखना छोड़ने का जो फैसला था वो सिर्फ लिटरेरी नहीं था, वो तो एक गहरा पॉलिटिकल और कल्चरल विद्रोह था।
हाँ, एक स्टेटमेंट था वो।
उनका एक बड़ा फेमस कोट भी है, गोली शारीरिक अधीनता का साधन थी, भाषा आध्यात्मिक अधीनता का साधन थी। कितनी सटीक बात है, उपनिवेशवाद के दोहरे वार को दिखाती है ये।
बिल्कुल, और ये समझ सिर्फ बीते हुए कल के उपनिवेशवाद तक ही नहीं रोकी। उन्होंने आजादी के बाद जो केन्या और दूसरे अफ्रीकी देशों में पनप रहा था नव उपनिवेशवाद, उसकी भी तीखी आलोचना की।
नव उपनिवेशवाद मतलब?
मतलब वो स्थिति जहां आपको पॉलिटिकल आजादी तो मिल गई, कागज पर आप आजाद हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, वो अब भी या तो बाहरी ताकतों के हाथ में है या फिर उन्हीं के जैसे काम कर रहे लोकल एलीट के हाथ में।
अच्छा, यानी सत्ता का चेहरा बदल गया पर लूट और दमन का तरीका नहीं बदला।
हाँ, कमोबेश वही। और इसी समझ ने गूंगी के लिए लेखक की भूमिका को भी बदल दिया। वो मानते थे कि राइटर सिर्फ कहानी सुनाने वाला या साइड में खड़ा होकर देखने वाला नहीं हो सकता।
तो फिर क्या हो सकता है?
उसे अपने लोगों के संघर्षों से जुड़ना होगा, उनकी आवाज बनना होगा। लिटरेचर को वो सोशल चेंज के लिए एक एक्टिव हथियार मानते थे।
जैसे उन्होंने वो कामेरी थू गाँव में किया था, कम्युनिटी थिएटर प्रोजेक्ट।
हाँ बिल्कुल, कामेरी थू वाला वो कमाल का प्रयोग था। गांव के किसानों मजदूरों ने खुद नाटक तैयार किया, उसमें एक्टिंग की, अपनी भाषा में, अपने मुद्दों पर।
लेकिन सरकार को ये पसंद नहीं आया शायद।
बिल्कुल नहीं, उनको लगा ये लोगों को भड़का रहा है, उसे बंद करवा दिया गया। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कला कितनी ताकतवर हो सकती है।
चलिए अब उनकी कुछ अहम रचनाओं पर आते हैं, क्योंकि उनसे उनके विचारों का विकास भी पता चलता है। उनका पहला उपन्यास वीप नॉट चाइल्ड 1964 में आया था।
हाँ, वीप नॉट चाइल्ड, ये किसी ईस्ट अफ्रीकन राइटर का अंग्रेजी में छपा पहला उपन्यास था। इसमें माओ माओ विद्रोह का जो दर्द था उसे एक बच्चे की नजरों से दिखाया गया है, बहुत मार्मिक है।
फिर आया अ ग्रेन ऑफ वीट 1967। इसे कई लोग अंग्रेजी में उनके लेखन का पीक मानते हैं।
हाँ, अ ग्रेन ऑफ वीट बहुत कॉम्प्लेक्स नॉवल है, आजादी के संघर्ष की जटिलताओं को दिखाता है। उसमें जो हीरोइज्म है, बलिदान है, और यहाँ तक कि जो धोखा और विश्वासघात है, उसको भी बड़ी गहराई से टटोलता है।
इसमें वो मल्टीपल नैरेटिव वाली टेक्निक भी है शायद, अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी कहना।
हाँ बिल्कुल, उससे कहानी और भी परतदार हो जाती है। लेकिन असली मोड़ आप कह सकते हैं वो 1977 में आया।
1977 क्या हुआ था?
उस साल उनका अंग्रेजी उपन्यास छपा पेटल्स ऑफ ब्लड। इसमें नव औपनिवेशिक केनिया का जो करप्शन था, जो असमानता थी, उसकी बहुत तीखी आलोचना थी।
अच्छा।
और इसी साल उन्होंने ंगुगी व मीरी के साथ मिलकर गिक्यूयू भाषा में एक नाटक लिखा, गाहिका दिंदा।
गाहिका दिंदा, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है आई विल मैरी वेन आई वॉन्ट, मैं तभी शादी करूंगा जब मैं चाहूंगा। ये नाटक उसी कामेरीथू गांव में खेला गया और जबरदस्त हिट हुआ, क्योंकि ये सीधे सीधे आम लोगों के इश्यूज उठा रहा था।
तो फिर सरकार?
सरकार ने नाटक बैन कर दिया और ंगुगी को बिना किसी ट्रायल के, बिना मुकदमा चलाए, एक साल के लिए जेल में डाल दिया।
सिर्फ एक नाटक लिखने और उसे प्रस्तुत करने के लिए?
हाँ, और यहीं जेल में उन्होंने वो किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने जेल के टॉयलेट पेपर कर, सोचिए, टॉयलेट पेपर पर गिक्यू भाषा में अपना पहला उपन्यास लिखा।
टॉयलेट पेपर पर? हाँ, कौन सा उपन्यास था वो?
कायतानी मुथराबा इनी, बाद में अंग्रेजी में डेविल ऑन द क्रॉस नाम से छपा 1980 में। ये भ्रष्ट नेताओं और बिजनेसमैन पर एक जबरदस्त सटायर है, व्यंग्य है। ये दिखाता है कि मतलब सत्ता उनकी आवाज को कैद नहीं कर पाई, उनका जज्बा कायम रहा।
ये तो वाकई कमाल की बात है, अटूट जज्बे का प्रतीक।
इसके बाद तो उन्होंने तय कर लिया कि वो गिक्यू में ही लिखेंगे। माटीगारी आया 1986 में, एक और अहम उपन्यास।
माटीगारी?
हाँ, ये एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी है जो आज़ादी के बाद पहाड़ों से उतरता है और सच्चाई और न्याय की तलाश करता है। कहते हैं कि उपन्यास इतना असरदार था, एक अफवाह है, पता नहीं कितनी सच है,
क्या
कि केन्याई सरकार ने इस काल्पनिक किरदार माटीगारी की गिरफ्तारी के आदेश तक दे दिए थे। उन्हें लगा कोई असली आदमी है जो घूम घूम कर लोगों को भड़का रहा है।
हाँ हाँ, ये तो कमाल है, फिक्शन कितना रियल हो सकता है।
हाँ, और फिर हाल के वर्षों में उनका वो विशाल उपन्यास आया, मुरोगी वकागोगो, अंग्रेजी में विजर्ड ऑफ द क्रो 2004।
हाँ, इसके बारे में सुना है, बहुत बड़ा उपन्यास है ये।
बहुत बड़ा, गेकुयू में लिखा गया एक महाकाव्य जैसा है। एक काल्पनिक अफ्रीकी तानाशाही पर जबरदस्त व्यंग्य है। इसमें मैजिकल रियलिज्म और लोक कथाओं का कमाल का मिश्रण है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उनका लेखन लगातार इवॉल्व हुआ और उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट और गहरी होती गई।
जब हम गुंगुंगी की बात करते हैं तो उनकी तुलना अक्सर उनके समकालीन अफ्रीकी लेखकों से होती है, जैसे चिनुआ अचेबे।
हाँ, लाजमी है, दोनों एक ही पीढ़ी के थे। शुरुआत में मकसद भी मिलता जुलता था, अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन हिस्ट्री को दुनिया के सामने रखना, कॉलोनियल नजरिए को चैलेंज करना। दोनों ने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया,
लेकिन फिर भाषा के सवाल पर दोनों के रास्ते अलग हो गए, है ना?
हाँ, यहीं पर बड़ा डिफरेंस आया। अचेबे का मानना था कि अंग्रेजी ठीक है, उपनिवेशक की भाषा है, पर अब ये एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। अफ्रीकी लेखक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए, बस उसे थोड़ा अफ्रीकी रंग देना होगा।
अच्छा,
पर नंगूगी का तर्क सादा रेडिकल था।
बहुत ज्यादा। उनका कहना था कि नहीं, असली मुक्ति अपनी भाषा में लौटने से ही मिलेगी। लेखक की पहली जिम्मेदारी अपने लोगों, अपने समुदाय के प्रति है, ग्लोबल ऑडियंस के प्रति बाद में।
ये बहस बहुत तीखी थी दोनों के बीच, और एक तरह से आज भी जारी है अफ्रीकी लिटरेचर में।
और शायद इसी वजह से नंगूगी की जो लेगेसी है, उनकी विरासत, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है।
हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ तो वो अफ्रीकी साहित्य के पायनियर हैं, पुरोधा हैं, दूसरी तरफ उनके भाषा वाले विचारों को कुछ लोग विवादास्पद भी मानते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो उनकी वो किताब डीकोलोनाइजिंग द माइंड, वो दुनिया भर में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का एक क्लासिक टेक्स्ट बन चुकी है, एक फाउंडेशनल टेक्स्ट।
और इसका असर सिर्फ अफ्रीका तक ही नहीं रहा होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत में भी, जैसे मैंने सुना है, महाश्वेता देवी जैसी लेखिकाओं ने उनके विचारों में अपनी आवाज की गूंज सुनी, खासकर जब वो आदिवासी समुदायों की भाषा और संस्कृति के अधिकारों की बात करती थीं।
हाँ, ये कनेक्शन समझ आता है। और आज की पीढ़ी के लेखक,
जैसे नाइजीरिया की चिमामांडा अदिची।
हाँ, वो तो अंग्रेजी में लिखती हैं।
हाँ, वो अंग्रेजी में लिखती हैं, लेकिन वो भी उन सवालों से जूझती हैं जो नंगूगी ने उठाए थे, कि भाषा, पहचान और सत्ता का रिश्ता क्या है। अंग्रेजी में लिखते हुए भी वो इन मुद्दों को एड्रेस करती हैं। तो नंगूगी का असर बहुत गहरा और स्थायी है।
और उनकी जो नव उपनिवेशवाद और ग्लोबल कैपिटलिज्म की आलोचना थी, वो तो आज भी बहुत सटीक लगती है। जब हम दुनिया में बढ़ती इनइक्वालिटी देखते हैं या कल्चरल इंपीरियलिज्म के खतरों को देखते हैं।
बिल्कुल, इसलिए शायद उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया पर मिला नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद उनके विचार इतने रेडिकल हैं कि जो स्थापित संस्थाएं हैं वो उन्हें पूरी तरह से अपनाने से हिचकती हैं। कौन जाने,
उनके कुछ विचार तो जैसे सूत्र वाक्य बन गए हैं। उन्हें याद रखना चाहिए, जैसे वो कहते हैं,
कौन सा,
कि यदि आप दुनिया की सभी भाषाएं जानते हैं और आप अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं तो ये गुलामी है।
हाँ।
लेकिन यदि आप अपनी मातृभाषा जानते हैं और उसमें दुनिया की अन्य सभी भाषाएं जोड़ते हैं तो ये सशक्तिकरण है।
क्या बात है, मतलब अपनी जड़ें मजबूत रखो, फिर दुनिया भर का ज्ञान उसमें जोड़ो, ये है एम्पावरमेंट।
बिल्कुल,
गुलामी नहीं।
या जब वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद का असली मकसद सिर्फ जमीन या रिसोर्स हड़पना नहीं था, बल्कि वास्तविक जीवन की भाषा के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करना था।
हाँ।
मतलब आपकी सोच पर, आपकी संस्कृति पर कब्जा करना। हाँ, ये दिखाता है कि भाषा पर हमला कितना गहरा हमला होता है। नंगूगी का अपना जीवन भी तो इन विचारों का गवा रहा है। जेल जाना पड़ा, दो दशक से ज्यादा निर्वासन में रहना पड़ा 1982 से।
हाँ, बहुत लंबा निर्वासन था। और 2004 में जब वो केन्या लौटे तब उन पर और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ।
ओह, ये सब क्या दिखाता है, यही ना कि उनके विचार कितने ताकतवर थे और सत्ता के लिए कितने असहज थे।
बिल्कुल,
नंगूगी व थ्योंगो हमें उन भाषाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सिर्फ बातचीत का जरिया है या ये हमारी सोच, हमारी पहचान, हमारी दुनिया को देखने का नजरिया भी तय करती हैं?
हाँ, और क्या अपनी जड़ों से कटी हुई भाषा हमें सच में जोड़ सकती है या वो अनजाने में हमारे बीच नई दीवारें खड़ी कर देती है? विरासत में मिली भाषा और चुनी हुई भाषा, इनके बीच हमारी जगह कहाँ है?
और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के दौर में पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने के इतने दशकों बाद कल्चर और विचारों के लेवल पर सच्चे डीकॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर नुगुगी हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
बिल्कुल, सोचने वाले सवाल हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।